नीति वचन अध्याय 30। हिजकिय्याह के जनों के द्वारा जो नीति वचन इकट्ठे किए गए थे, उन नीति वचनों का समापन अध्याय 29 में हो चुका है। 30वें अध्याय में हमारे पास है नीति वचन अध्याय 30 पद 1, याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। आगुर कोई भी हो, उसने हमें बताया कि वो कौन है, लेकिन इस अध्याय से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। नीति वचन अध्याय 30 पद 1, याके के पुत्र। मैं नहीं जानता याके कौन था। पद 1 में आगे लिखा है, उस पुरुष ने इतियेल और उकाल से ये कहा, और हम आगुर को नहीं जानते, तो भी परमेश्वर ने उसे उचित स्थान धर्मशास्त्र में रखा। आगुर कहता है, नीति वचन अध्याय 30 पद 2 और 3, निश्चय मैं पशु सरीका हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। दूसरे शब्दों में वो अपने आप को कोई महत्व नहीं देता। पीएचडी या कोई और, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास पवित्र परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, मैं गवार मनुष्य हूं, मुझ में मनुष्य जैसी बुद्धि भी नहीं है। परंतु वो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। नीति वचन अध्याय 30 पद 4, कौन स्वर्ग से चढ़कर फिर उतर आया? वो मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। पद 4 में आगे लिखा है, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? निस्संदेह मनुष्य ने नहीं। पद 4 में आगे लिखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? निस्संदेह मनुष्य ने नहीं। पद 4 में आगे लिखा है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? वो किसी मनुष्य के बारे में नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर के बारे में कह रहा है। वो उन चीजों की बात करता है जो परमेश्वर के हाथ में है। पौलुस ने हमें बताया है, इफिसियों 4 अध्याय 8 और 9 पद, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। इसलिए कौन स्वर्ग से चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? नीति वचन अध्याय 30 पद 4 में आगे लिखा है, उसका नाम क्या है? रोचक। परंतु वो और भी रोचक बात कहता है। नीति वचन अध्याय 30 पद 4 में आगे लिखा है, और उसके पुत्र का क्या नाम है? वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहता है। ये एक रोचक सवाल है। वो परमेश्वर के बारे में और उसकी चीजों के बारे में बोल रहा है। उसने कहा, उसका नाम क्या है? उसका नाम वास्तव में यहोवा है, और उसके पुत्र का क्या नाम है? यीशु है। नीति वचन अध्याय 30 पद 4 के अंतिम भाग से लेकर पद 6 तक, यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में तू कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। परमेश्वर के वचनों में कुछ मत जोड़ो। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने व्यवस्था देने के बाद चेतावनी दी कि मनुष्य व्यवस्था में कुछ भी घटाने की कोशिश ना करे, आज्ञाओं में से कुछ भी ना निकाले जो परमेश्वर ने दी है, या मनुष्य उनमें कुछ ना जोड़े। फिर भी यहूदियों ने अपने तालमुद यहूदी विधि संग्रह में करीब 60 ग्रंथ व्यवस्था का अनुवाद करते हुए जोड़े, मिशना, तालमुद आदि। यहां फिर परमेश्वर का वचन सत्य है। वो कहता है उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में परमेश्वर ने उन मनुष्यों पर एक विशेष शाप की घोषणा करता है जो इस पुस्तक में कुछ बढ़ाए या घटाए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19 पद। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से उसका भाग निकाल देगा। मनुष्य के लिए यह बहुत कठिन बात है कि वो परमेश्वर के बारे में अनुमान लगाकर बोले। परमेश्वर हरेक को जो अनुमान करके परमेश्वर के प्रति बोलेगा गंभीर चेतावनी देता है। हाय उन पर जो ऐसा करते हैं, सेनाओं का प्रभु कहता है, और परमेश्वर कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करेंगे जिसने दुस्साहस करके उन बातों को कहा जिन्हें परमेश्वर ने नहीं कहा था। पत्रस अपनी पत्री में कहता है, दूसरा पत्रस 1:3, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। जो कुछ जीवन के लिए और भक्ति के लिए हमें चाहिए परमेश्वर ने हमें पहले ही से दिया है। हमें आज के युग के प्रकाशन को प्रभु से मांगने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक युग मनुष्य की समस्या यही तो है कि वो परमेश्वर की ओर से वक्ता बन जाता है। कैथोलिक चर्च ने पोप के सिर के ऊपर घेरा लगा दिया और उसे अचूक घोषित कर दिया कि वो परमेश्वर की ओर से बोलता है, और उसके शब्दों को परमेश्वर के शब्द मानकर स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार मॉर्मोन लोगों के भी साथ होता है। उनके प्रेरित और उनका अध्यक्ष परमेश्वर की ओर से बोलते हैं और उनको उनके शब्दों का वचन मानकर स्वीकार करना पड़ता है, और आप विवाद नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों से बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आज भी प्रेरितों के द्वारा हमसे बातें करता है। यही बात यहां कही गई है, ऐसा न हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा पाया जाए। वो मनुष्य जो इस अधिकार से कि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है कुछ घोषणा करता है, जब दूसरा मनुष्य आता है और पहले वो मनुष्य की बात को काट देता है और कहता है कि एकमात्र वो ही परमेश्वर की ओर से बोलता है। ब्रिंगहम यंग मॉर्मन चर्च का एक प्रेरित और अगुआ है। उसने बहुत सी अनर्थ बातें जो आज कलीसियाएं नहीं मानती कही, वे विस्मित करने वाली बातें हैं। मॉर्मोन चर्च की बहुत सी ऐसी धर्म शिक्षाएं हैं जो कलीसिया को स्वीकार्य नहीं है। ब्रिंगहम यंग ने ये घोषणा की कि आदम उनका परमेश्वर था, वही परमेश्वर है जिसके साथ उन्हें चलना है। उसने घोषणा की कि ऐसे भी पाप है जिन्हें यीशु मसीह का लहू धो नहीं सकता, और मनुष्य को उन पापों के लिए अपना लहू स्वयं बहाना पड़ेगा। मसीह का लहू काफी नहीं है, और उसने बहुत बार ऐसा प्रचार भी किया है। आज मॉर्मोन स्वयं का खून बहाने के विचार को स्वीकार नहीं करते कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करें। लेकिन फिर एक प्रेरित ने परमेश्वर की ओर से बोलते हुए कहा है कि परमेश्वर अपना मन बदलता नहीं, इसलिए वो मनुष्य जो ये कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से बोलता है वो झूठ बोलता है, जबकि परमेश्वर नहीं बोलता। वो मनुष्य झूठा पाया जाएगा, और परमेश्वर का वचन सत्य है, वो बदलता नहीं, वो परिवर्तित नहीं होता। नीति वचन अध्याय 30 पद 7 और 8। मैंने तुझसे दो वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। ये आगूर की परमेश्वर से प्रार्थना है, केवल दो वर प्रभु मैं चाहता हूं, उनका इनकार मत करना, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। नीति वचन अध्याय 30 पद 8 और 9। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आगूर सामान्य जीवन की आशा रखता है, मुझे धनी मत बनाना, कहीं मैं कहूं यहोवा कौन है और तेरा इनकार करूं, और मुझे निर्धन मत बनाना कि अपना भाग खोकर चोरी करूं। इसलिए परमेश्वर मुझे उतना ही देना कि मैं सामान्य जीवन जी सकूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वो तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी छड़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। निस्संदेह पद 11 से लेकर 14 पद तक दुष्ट पीढ़ी के लोग हैं। खास पीढ़ी के लोगों में दुष्टता की ये बातें होती है, जैसे जोंक की दो बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार है जो कभी नहीं कहती बस। चार चीजें हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होती, वे कहती है ये पर्याप्त नहीं है। सबसे पहली चीज, नीति वचन अध्याय 30 पद 16, अधोलोक, कब्र कभी नहीं कहती ये काफी है, लोग रोज मर रहे हैं। और दूसरी चीज पद 16, बांज की कोख। तीसरी चीज पद 16, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, सूखी भूमि। और चौथी चीज, नीति वचन अध्याय 30 पद 16, आग जो कभी नहीं कहती बस। नीति वचन अध्याय 30 पद 17 से लेकर 21 तक, जिस आंग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन चार है जो मेरा समझ से परे है, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसे ही है, वो भोजन करके मुंह पोछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। तीन बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन चार है जो उससे सही नहीं जाती। चार घृणित चीजें, नीति वचन अध्याय 30 पद 22 से लेकर 24 तक, दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर चार छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है, चार छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि से अधिक बुद्धिमान है। नीति वचन अध्याय 30 पद 25 से लेकर 28 तक, चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। शापान भली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर पयान करती है, और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है। या मकड़ी, नीतिवचन अध्याय 30 पद 28 में आगे लिखा है, तो भी राज भवनों में रहती है। चींटियों से हम बुद्धि की बात सीखते हैं, भविष्य के लिए तैयारी करना, कैसे वो धूप काल में भोजन वस्तु बटोरती है, क्योंकि चींटियों को ये ज्ञात होता है कि ऐसा समय आएगा कि उन्हें जब भोजन नहीं मिलेगा। जब भी समय होता है ये उनके लिए, तभी वो भोजन वस्तु बटोरने का अवसर होता है। यीशु ने एक दृष्टांत में कहा, लूका 16 अध्याय 9 पद, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। दूसरे शब्दों में, जो कुछ आपके पास है आपने अनंत निवास के लिए यहीं पर काम में ले ले, ये बुद्धिमान है। बहुत से लोगों के पास बुद्धि नहीं होती। चींटियां हमें बुद्धि के प्रयोग की शिक्षा देती है कि भविष्य के लिए तैयारी करें। छोटा सा शापान हमें सिखाता है कि बुद्धि से अपनी निर्बलता को पहचाने और शक्तिशाली की शरण ले। अपने घर चट्टानों में बनाए, अपनी कमजोरी को पहचाने और अपने आप को यीशु मसीह जैसे चट्टान में छिपाए। टिड्डियां हमें बुद्धि के साथ मिलकर कार्य करना सिखाती है। अकेली टिड्डी कोई हानि नहीं कर सकती, लेकिन जब वे दल बांधकर पलायन करती है तब वे विनाश ले आती है। काश कि कलीसिया टिड्डियों से एक साथ मिलकर काम करना तथा परमेश्वर के राज्य के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने की कला को सीख पाती। जैसा कि अंत में छिपकली सिखाती है कि राजमहल में टिके रहने के द्वारा अपनी बुद्धिमानी को दर्शाती है, परिणाम स्वरूप वो राजमहलों में वास करती है। आपने पुराने नियम में लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे हुए देखा होगा। इसी तरह हम भी राजा के महल में अर्थात परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। नीतिवचन अध्याय 30 पद 29 से लेकर 33 तक। तीन सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन चार हैं, जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ धर, क्योंकि जैसे दूध के मतने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। ये आगूर के वचन है, आगूर जो याके का पुत्र है, जो स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता।